दोस्तों परसों क्या खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है। अरे जल्दी घबराने की कोई बात नहीं है। अरे आज करेंगे तो कल करेंगे, कल करेंगे तो परसों नहीं चाहो, परसों समय पड़ा है, क्या खटखट में पड़े हुए हो। अरे अभी समय पड़ा है और इसी की मृत्यु हो गई, बस परसों क्या। इसे समय रहते हुए इस और भगवान का नाम स्मरण करो, कीर्तन करो। अब हम दूसरी कथा एक और प्रकार कैसा भक्त होना चाहिए। बाप और बेटे में झगड़ा विवाद हुआ। बाप बहुत कैसा, क्योंकि दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, जो कि आकाश में नहीं मरेगा, पृथ्वी में नहीं मरेगा, बम से नहीं मरेगा, किसी मनुष्य से नहीं मरेगा, किसी पशु पक्षी से नहीं मरेगा, कोई मनुष्य से, गंधर्व राक्षस से भी, सांपों से भी नहीं मरेगा, किसी महीने में नहीं मरेगा, 12 महीनों में नहीं मरेगा, और रात में नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा। एक तरह से अजर अमर हो गया ब्रह्मा जी के पास से। कौन हिरण्यकशिपु थे वो, और उसका छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का शिशु प्रहलाद महाराज, दोनों में लग गया। वो कह रहे तुम हरिनाम करो, और वो कहता कि मैं तो करूंगा, आपके सब आदेश को पालन करूंगा, किंतु भगवान का नाम मुझे कर रहे हैं। इसके पहले की बात है, हिरण्यकशिपु को क्यों विष्णु से झगड़ाई, क्यों लड़ाई हो गई, क्यों विष्णु को नहीं मानता है। उसके भैया को हिरण्यकश्यप को भगवान ने बड़ा धारण करके मारा, वो पृथ्वी को चुरा ले गया, वेदों को चुरा ले गया। इसलिए पृथ्वी को फिर अपने समतल पर लाने के लिए उन्होंने बड़ा धारण करके प्रलय के समय में वो भीतर चले गए और जाकर के पृथ्वी को अपने दांतों पर पकड़ कर चुराए और हिरण्यकश्यप को भी पकड़ा। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप को माने गया। हमारे संस्कृत में जितने भी शब्द हैं वो सब सार्थक है, सार्थक मैंने उनका अर्थ होता है। अंग्रेजी में या दूसरी भाषा में आजकल जो नाम बच्चों करते हैं, लिली, टिंकू, थिंकू, टिंकू, अरे ये क्या, ये कहां से आ गया, थिंकू टिंकू थिंकू माने क्या, इसका क्या अर्थ है। बड़े प्यार करता है, अरे भाई मधुसूदन उस बच्चे का नाम, नहीं मधुसूदन ठीक नहीं है, टिंकू ठीक है, अरे टिंकू क्या। किंतु संस्कृत में, गुजराती में, हिंदी में, बंगला में शब्दों के अपने माने होते हैं, अर्थ होते हैं। कोई भी शब्द हो जरूर कुछ ना कुछ माने होता है। हिरण्यकश्यप माने क्या, हिरण्य माने स्वर्ण, हिरण्य माने होता है स्वर्ण सोना। जो अर्थ को जानते हैं कि हमारे जीवन में सुखी होने का कारण यह अर्थ है, ऐसा जानते हैं वो सब हिरण्यकश्यप के भाई हैं, जितने भी वो आ रहा है समझ में। हिरण्यकश्यप किसको कहते हैं, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जो ये समझते हैं कि सोने के द्वारा, अर्थ के द्वारा, वैभव के द्वारा हम जगत में सुखी रह सकते हैं, वो सब हिरण्यकश्यप के दल के सैनिक या उनके भैया और सरदार के। और जो ये समझते हैं भगवान के नाम के द्वारा ही, भगवान की भक्ति के द्वारा हम प्रसन्न रह सकते हैं, वो प्रहलाद जी के दल के। हिरण्यकश्यप का भैया मारा गया, मारा गया, उसका सिर कट गया और वो गिर गया, मर गया। हिरण्यकश्यप उसके शरीर को राजभवन में लिया और लेटा दिया, कफन ऊपर से चढ़ा दिया गया। हिरण्यकश्यप की मैया रोने लगी, हिरण्यकश्यप की पत्नी और उसके 50 लड़के रोने लगे, उनकी बहुएं रोने लगी, सब लोग रोने लगे, छाती पीट लगे। हाँ महाराज किधर चले गए, हाँ हमारे पिताजी कहाँ गए, हमारे पति कहाँ चले गए, सभी लोग रोने लग गए। कोई भी समझाने वाला नहीं, फिर लेकर कुछ टाइम समझाने लग गया, अरे भाई क्यों रोते हैं, वो वीर की गति को प्राप्त हो गया, लड़ करके मरा, रोने की कोई जरूरत, आज मैं कल तो मरना है, आज मर गया कोई बात नहीं, अरे कल मरता आज मर गया कोई बात नहीं, समझा रहा। वेदों का ज्ञाता था हिरण्यकश्यप और रावण दोनों, किंतु भगवान में विश्वास नहीं उनका था, जानते हैं सभी किंतु करते नहीं। ये उपदेश दे रहा है किंतु सफल नहीं होगा उपदेश का, क्यों, ये खुद नहीं करता, और उपदेश द्वारा वेदों की बात। मोनाफाइड जो गुरु है, जो सदगुरु है, और नकली गुरु में यह अंतर है। सदगुरु जो है जो सिद्धांतों को जानते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो कह देंगे तू हरि का भजन कर, बस इतना ही कहेंगे, कह जो राम राम, बहुत जब फिर से ये हो गया, आदमी उसको पार कर जाएगा, उसको ग्रहण कर लेगा, वो करेगा सारा जो वो गिरेगा नहीं। और यदि क्वालिफाइड गुरु नहीं है, बोनाफाइड गुरु नहीं है, और वो उपदेश देगा जो राम नाम या कृष्ण नाम करो, कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। इस विषय को अच्छी तरह से समझो, पक्का गुरु होना चाहिए। एक दैट गुरु इज बोनाफाइड सदगुरु, एन इटिकल इनिशिएट एंड सर्व दैट टू कृष्ण नाम हरे कृष्ण, देन इट विल बी बोनाफाइड, इट इज कॉल्ड सप्त ब्रह्म। सो मच पावर। कैसे? नर जी ने वाल्मीकि जी को कहा, जब वो बह लिया हुआ था ब्राह्मण घर का लड़का, कुसंग में पढ़ करके लूटना कूटना डकैती करना लोगों को मारना, ये इसका काम हो गया, वहां पापी हो गया। इतने ब्राह्मणों और ऋषियों को मारा कि उसके जरे उससे 10-20 कुएं भर गए। उस समय में नारद जी ने नारद जी को मारना चाहता था किंतु नहीं मार सका। उसने कहा कि घर में जाकर के देखो, अपनी पत्नी और बेटे और बाप से पूछो, तुम्हारे पास के वो भाग लगे कि नहीं। उन लोगों ने किसी ने मंजूर नहीं किया, लौट करके आया, उनके चरणों में गिर गया। उसने नारद जी से पूछा, मैं क्या करूं? एक बात तो धनुष और तीर और मुद्गर ये सब खेल दो, और मैं चाहता हूं ये राम राम करो, तो एक बार बोलो राम, नहीं कर सकता कोई मुझको, ये नहीं मैं कर। अच्छा एक बात करो, मारा काटा है तो मारो मारो तो खा किया है, मरा मरा, हाँ ये तो कर सकता। अच्छा तो मरा मरा करो, तो वो मरा मरा कर, मरा मरा मराम राम हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाद नीच भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करने पर भी, किंतु गुरु कौन था? हम कहेंगे तो होगा नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं है, सब लोगों के कहने से, नारद जी के कहने से कहूंगा नहीं होगा। गुरु ऐसा होना चाहिए, पानी पियो छान कर और गुरु करो ज्ञान कर, पहले परीक्षा करो तुम्हारे गुरु कहते हैं, उन्होंने भजन किया है कि नहीं, भजन करते हैं कि नहीं, भगवान के में आसक्ति है कि नहीं, प्रीति है कि नहीं, तुलसीदास जी जैसे हैं कि नहीं, वाल्मीकि जी जैसे हैं, नित्यानंद प्रभु हरिदास जी महज पापी जगाई मधाई तो कहा और बस पापी शास्त्र बदल गया, परम भक्त हो गया, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए हरिंद्र कटकु जी उसको मना कर रही है, तुम हरी हरी मत करो, और वो कहते हैं हरी हरी तो बस कृष्ण 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 हरे कृष्ण बच्चों के साथ में भी सबके साथ में बस किए ना। पिताजी ने उसे बुलाया, बुला करके कहा भाई तुमको गुरु जी के पास में पढ़ने के लिए दिया, और तुम्हारे गुण है संडा मार्क। संडा मार्क माने क्या? संड माने सांड, सांड जानते हैं जो खूब खाता है, इधर उधर चलता रहता है, इच्छा के अनुसार में यहां वहां जाता है, कोई नियम रेगुलेशन नियम नहीं उसके लिए है, जाया हुआ कहां गाय के पीछे दौड़ा, इधर गया वहां खाया पीते के घर में खा लिया, कुछ लोग डंडे से भी उसको खिला देते हैं, डंडे भी खाता है, यह है सांड, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। और अमर्थ अर्थ माने सूर्य, जहां पर सूर्य नहीं चमकते हैं वो अंधकार, यहां पर कि ज्ञान नहीं है उसको कहते हैं अमर्थ। श्रेष्ठ अंडामर्थ, ज्ञान से भक्ति से कोई संबंध नहीं, ऐसा व्यक्ति वो संडामर्थ है, सांड के समान है, उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उनको पढ़ा रहा क्या? साम दाम दंड भेद चार प्रकार की नीतियां राजनीति आजकल भारतवर्ष में चल रही है। वो कहता है मैं प्रधानमंत्री हूँ, वो कहेंगे मैं प्रधानमंत्री, वो कहेंगे मैं प्रधानमंत्री, कौन आज वो बदल रहे हैं, कल वो बदल गए, परसों बदल गए, कोई कुछ ऐसा नहीं, राजनीति से नहीं, पसंद सरल हो, यदि सरल हो निष्कपट हो गए भगवान के चरणों में समर्पण कर देने से सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान का भी होगी, और ये तो जब मर गया तो समझा रहा है, देखो तभी मैं कह रहा था कि सदगुरु यदि होंगे तब तक फिर ये काम करेगा, और सदगुरु नहीं मिले और वो लाख बार राम राम करेगा तो वो काम नहीं होगा। इस चीज को पहले समझना चाहिए। इसलिए वो समझा रहा है, देखो भाई रो मत, मैं तुमको एक इतिहास बताता हूं। ये शरीर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी है, जो जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। जा सकते ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म करते, ये गीता का संदेश है, ये वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान है। इस चीज को समझो, जो जन्म लिया है वो मरेगा। यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं ये बड़ी खूबसूरत औरत हूं, नहीं मैं खूबसूरत पुरुष हूं। वो मेरी दीदी है, मैं उसका पति हूं, वो मेरा बेटा है। भाई ये गलत, ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, भगवान के दास। इस चीज को समझा जाए, आत्मा अजर अमर है, वो आग में नहीं जलता, उसको हवा नहीं सुखा सकती, पानी नहीं भिजा सकता, वो सब बीज की क्रिया नहीं होगी। इस चीज को समझा जाए, आत्मा अजर अमर शाश्वत और नित्य है सनातन। इस चीज को जाने ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म मांस मछली नहीं खाया, जनेऊ लगा दिया और सनातन धर्मी हो गया, नहीं। इस सनातन तत्व को समझना होगा, वैदिक ज्ञान को समझना होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का पार्ट और पार्ट हूं, अंश हूं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे भगवान आनंद रहे, भी आनंद में भगवान को छूट करके भूल करके ये संसार में घुमरा जन और मरण के चक्कर में चल रहा है। इसलिए इसको समझना ही सनातन धर्म है, और भगवान का भजन करना ये सनातन धर्म है। वहां पर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई गुजराती ईसाई बौद्ध ये सब विचार नहीं है, आत्मा है, सभी भगवान के दास है। इसी समझना सबसे ब्रदरहुड भाव है, विश्व प्रेम इसी को कहते हैं। गधे में घोड़े में मनुष्य में पेड़ में पौधे में सब जगह वो आत्मा है। इस चीज को समझो, और कृष्ण ही सबके मूल है, उनके साथ है प्रेम करते, यही विश्व धर्म है, सनातन धर्म है, वैष्णव धर्म है, भागवत ही धर्म है। भारत में कई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई झगड़ा की बात नहीं, सभी भगवान के हैं, आत्मा अजर है। तो वो कह रहा है देखो, यदि विश्व के सभी लोग एक इतिहास कहने लगा कि एक उसीना देश के राजा थे, वो विश्व में सबसे बड़ा राजा होना चाहते थे, इसलिए पड़ोसी पर राजे पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और युद्ध में मारा गया, सब लोग रो रहे हैं, समझाने वाला कोई नहीं। उस समय जन्म 5 वर्ष के बालक होकर के आए, भाई किस लिए रो रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा। बाबा पूछा कि भाई किस लिए रो रहे हैं, तो एक लड़के एक बुद्ध आदमी ने उत्तर दिया, भाई ये मर गए इसलिए रो गए, राजा मर गए। उसने कहा कि मेरे पिताजी मर गए। भाई मर तो नहीं गए, कहां गए, ये तो सो रहे, उनसे बातचीत करो, जिसको पिता कहा तो वो तो सो रहे हैं। तो हम इवर फादर फादर इज लैंड जाऊंग गया, नहीं गया कहीं। सुना ये शरीर के लिए नहीं रो रहे तो किसके लिए रो रहे, अरे इसके अंदर से जो आत्मा निकल करके गई मैं इसके लिए रो रहा हूं। अच्छा तो ये बतलाओ, जो आत्मा निकल करके गई वो काली थी कि गोरी थी, कितनी लंबी चौड़ी थी, मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो देखा नहीं इसको, देखा कि लंबी चौड़ी गोरी थी, और कब चली गई, कैसे चली गई, कहां चली गई तो मैं नहीं जानता। तो फिर वो क्यों रहा, तुम्हारे जैसे सैकड़ों आदमियों को मैं बुलाऊंगा और सभी लोग रहेंगे, कभी नहीं आएगा। बंबई में पैसे देकर के रुलाने वाले रोने वाले बुलाए जाते हैं, पैसे देकर के, ऐसे तो कोई कौन रोएगा। तो 50-60 आदमी को बुला लिया, उनको पैसे 2-4 हजार दे दिए, भाई हमारे घर में कोई रोने वाला नहीं है, तुम आकर के छाती पीटो और रो, उनको 2-4 हजार रुपये दे दिया। तो वैसे हम बुला लेंगे विश्व से 10-20 हजार आदमी बुला लेंगे, पैसे दे देंगे और रो लेंगे, आ जाएगा वो नहीं लौटने का, वो जहां चला गया वहां से लौटना नहीं होता भाई। इसलिए समझो, कहा कि देखो एक कबूतर एक कबूतरी थी, समझ रहे हैं, कबूतर कबूतरी, एक जोड़ा कबूतर कबूतरी, उसके बहुत से बच्चे थे, उन बच्चों को पालन करने के लिए वो जंगल में गए कुछ चारा के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, अपने खाने के लिए। देखा एक जंगल में सुंदर सुंदर हरी घासों के ऊपर में चारों के कण मन मोती के तरह दिखाए गए, चारों के कण थे। पत्नी ने देखा, पुत्री ने कहा, जैसे प्रिय प्रियतम चलो यहीं से हम लोग भी खाएंगे, बच्चों के लिए भी देंगे। इतने में पुरुष ने कहा कि देखो मत जाओ, इस जंगल में कहां से चावल का कण आएगा, ये बहरिए ने जाल रखा है वहीं पर ये फेंक दिया है, जाओगी मरेगी। उसने बात नहीं मानी और वो झट फुर लुड़ी और वहां पर बैठ गई और सुनने लगी, पति को बुलाने लगी, सारे से आ जाओ कोई बात नहीं, कोई डर की बात नहीं। और इतने में बहरिए ने जाल फेंक दिया, वो जाल के अंदर में अब तो रोने लगी, दिल दिलाने और ये भी ऊपर से उतर करके गया, उसे दिल दिलाने लगा, दोनों मिलकर के रोने लग गए। ये कहता कि हाय है, मैं मर जाता तो अच्छा था, ये बच्चों को पालन कर लेती, मैं तो बच्चों का पालन करना तो मैं जानता नहीं, तो ये बच्चे तो मर जाएंगे। हाय हाय कितने प्रेम से हम लोग थे और आज ये पहले ही चली जा रही है और मैं अभी तक बचा हुआ हूं, हाय हाय मेरी मृत्यु आ जा। और वो विलाप कर रहा था, इतने बहरिया ने देखा कि ये रोने में एकदम तन्मय हो गया है, उसने बाण निकाला और झट मारा उसके यहां पर लगा छाती में और पार पार हो गया, रक्त गिरने लगा और वहीं पर ठेर मर गया। बैलिया हंसता हुआ ताली बजाता हुआ आया और दोनों को पकड़ करके पैरों में बांध करके घर लेकर के आग में सेक करके और खा गया। ऐसे कोई आदमी मर रहा है, हमारा पता रो रहे हैं, अरे वो, अरे तुमको भी जाना है, तैयार हो जाओ, हम लोग को भी तैयार हो जाना चाहिए। मेरे पिताजी मर गए, उनके पिताजी भी मर गए, उनके पिताजी भी मर गए, है कोई तो इस तरह से हम लोग को विचार करना चाहिए कि हमको भी जाना पड़ेगा। इसे आज से हम लोगों को भगवान का भजन में लगना उचित है, यही हमारा सनातन नहीं दिखता है, यही इसी को संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति, यदि भगवान का नाम है हम लोगों को भी कभी ना कभी जाना, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। बाकी एक घंटा हो गया है, अभी थोड़ा सा कीर्तन करके और तब हम लोग कल से कृष्ण का लीला चरित्र जन्म से लेकर के दो एक कृष्ण के लीला के चरित्र, गोपियों का महत्व, भक्तों का महत्व हम वर्णन करें, और अधिक समय रहता तो 5-7 दिन में भागवत की पूरी कथाओं को सुनाने का मैं चेष्टा करता, इसका बहुत ही गंभीर अर्थ है, सब इसमें प्रवेश नहीं कर, इसलिए हम लोग को इसमें प्रवेश करके और भगवान का भजन करना ही मनुष्य जन्म की साक्षात्ता है। यदि हम प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हमको बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, बच्चों ने कहा असुर बालक, भाई अभी जल्दी क्या पड़ी है, हम लोग बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसके बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे 80 वर्ष के तब भगवान की माला करेंगे, आज कभी क्या जरूरत है। प्रहलाद महाराज जी कहें, अरे बूढ़ा होगा कि नहीं होगा तो गारंटी है, नो गारंटी दैट यू बी ओल्ड आर नॉट बिफोर दैट यू कैन बी दैट इन एज ऑफ 5-10 कोई जरूरत नहीं, कोई भी आवश्यकता, इसलिए भगवान का नाम बचपन से करो। बचपन में मति बड़ी कोमल होती है, जैसे बांस होता है हरा, उसको ऐसे नवा देते हैं झुक जाता है, किंतु सूखा हुआ बांस उसको ऐसे झुकाओ तो टूट जाएगा। 80 वर्ष के 60 वर्ष के बाद में किसी को उपदेश मत दो, वो नहीं सुनेगा, इसे बचपन में बच्चों की मति बड़ी कोमल होती है, तो वो हरि भजन है। न तब प्रयास हो तब सत्य जैसा आयु बया परम, बिना दुख बिना बुलाए दुख आ जाता है, तो सुख भी होगा तो जरूर आएगा, खोदा देगा तो क्या सब पर फार करके वो दे देगा, दुख बिना बुलाए आता है, बुढ़ापा आ जाती है, हम नहीं चाहते कि बुरे हों, क्यों बुरे हो जाते हैं, ये समय है वो आएगा ही, जैसा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया उसका फल भोगना भी तो पड़ेगा, इसे आएगा, तो वैसे तुमने सुख का काम किया तो सुख भी आएगा, इसलिए इसके लिए अधिक चिंता मत करो, चिंता करो जैसे हमारा सब भी कैसा होगा, इसलिए भगवान का भी से भजन करो। देखो 100 वर्ष हमारी आयु है, मान लिया सपो 100 में से 50 वर्ष होने में चला गया, रह गया 50, जरूर आदमी सोएगा ही, और यदि इन ड्रिंक अभी किया तो फिर और भी अधिक समय चला जाएगा सोने में, इसे कम से कम 50 वर्ष सोने में गया, और 20 वर्ष बचपन से देकर लिखने पढ़ने सीखने खेलने कूदने और योग्य बनने में लगता है। इंजीनियर या कोई भी टीचर या कोई भी हो, 20 वर्ष किया गया और 80 से 20 एक सौ वर्ष तक की आयु, बूढ़े हो जाएंगे, कमर भी सीधी नहीं होगी, चल नहीं सकेंगे, ओल्ड एज में शायद जाना पड़े, ओल्ड हाउस होम, ओल्ड हाउस, कुछ भी नहीं कर सकेंगे उस समय। तो यह 20, 20, 40 और 50 90 वर्ष चला गया और आ गया एक सौ वर्ष, इसमें विवाह शादी करना है, बच्चे हैं
10
वर्ष में बाल बच्चे करना है, घर बनाना है, कार लेना है और सब व्यवस्था करनी है, बच्चों की शिक्षा देनी है और इतने में हो गई मृत्यु, कब भगवान का भजन करेगा? इसलिए बचपन से भगवान का कैसे करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे लिए एक सब गुरु, बच्चों के संग में जाओ, साधु संग, साधु संग, साधु संग, जो भगवान का भजन करते हैं, जो गरीब होने पर भी बड़े आनंद से रहते हैं, उनको कोई भी चीज की कमी नहीं है, शंकर जी के पास में कोई राज्य नहीं है, कुछ भी नहीं है और विश्व को सब कुछ देते हैं, हनुमान जी के पास में क्या है, वो सबको सब कुछ दे सकते हैं, नारद जी के पास में भी कुछ नहीं सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए बचपन से भगवान का साधु संग में जाकर के गुरु की सेवा करो, वो तुमको वैदिक ज्ञान और वैदिक जो भक्ति है इसको तुमको मिला। भागवत में जिस भक्ति की बात कही गई है वो भक्ति को वो साधनी दे देंगे, घर का काम करो, कोई हज नहीं, गृहस्थ रहो या सन्यासी बनो, कोई फर्क नहीं, स्त्री है, पुरुष है, बाल है, बच्चा, कोई भी अंतर नहीं, जहां रहो वहीं से भगवान का नाम, पवित्र अपवित्र समस्त अवस्थाओं में भगवान का नाम किया जाए, तट्टी जाते समय भी भगवान का नाम किया जा सकता है, मलमूत्र त्यागते हुए भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए समस्त अवस्थाओं में पैसा नहीं लगता, कौड़ी नहीं लगती भगवान का नाम लेने में, पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं, इसलिए जहां भी रहो भगवान का नाम, खाने पिता सम्मान हो, गृहस्थ हो, त्यागी बनो, साधु बनो, जैसा भी हो बाल बच्चों के साथ में रहो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, भगवान का नाम करो, समस्त अवस्था में पैसा नहीं, दिन है कि रात में होगी कोई बात नहीं, दिन में समय नहीं है रात में करो, सवेरे करो, शाम को करो, बिना स्नान किए कर सकते हो, इसलिए भगवान के नाम में ये सब विचार बहुत ही प्रभावशाली है, इसलिए भगवान का नाम करो, सब गुरु का आश्रय करके वैष्णव की सेवा करते हुए, इसलिए हमारे मंदिरों की व्यवस्था की गई है, कभी न कभी कोई संत आएंगे, कोई वैष्णव आएंगे मंदिरों में, कुछ हरि कथा कहेंगे, इसीलिए बनाया हमारे पूर्वजों ने, इसलिए इसका सदुपयोग आज यही कर सकते, मैं कथा का विश्राम देता गौ प्रमानंद जय जय श्री आदि, अंग्रेजी में समय हो गया दो मिनट बोलते हैं सही कर देगा।
आज हमारे विश्वनाथन मंदिर में आकर जो श्रीमद्भागवत कथा अपसन और आशीर्वचन हमें कहे उसके हम खूब आभारी हैं और कल भी ये प्रवृत्ति जारी रहेगा, कल 7:30 से 9:30 तक तो स्वामी जी का दर्शन करने के लिए कल भी अंतर रहे। हरि ओम, हरे कृष्णा, हरे रामा। हमें यहाँ शिष्य थे जो अंग्रेजी माँ गुरु प्रवचन करते, तो मैं आज दिवाली से
give a brief summary of some of the things that he spoke, and maybe later we can explain things in greater detail. So he first of all started by offering his heartfelt obeisances unto his Gurudev, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, who was a disciple of Jagadguru Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. He was a very dear disciple of his Gurudev, and he was also the sannyas guru of A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, who brought Krishna consciousness to the Western countries. And so he was remembering his Gurudev and thinking how by his inspiration and giving sannyas to Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, this Krishna consciousness was spread all over the world. And he began by explaining the present world situation So, although there is plenty of everything in the world, especially here in the West, and even in India now, we can see the material progress, all facilities are there, and especially the progress of modern science, so many discoveries are there. One can be sitting in one place and watching events going on in some other place of the world. And he even said that their science is so advanced now that they can penetrate into the heart and see what other people are thinking. So, although modern science has progressed so much, there is a great lacking in the world, and that is that there is no love between husband and wife, between children and parents, between brother and sister. This is a great problem. Formerly it was not so, but now with the progress of this modern civilization, we see that this is very much deteriorating. And as a result, although people have everything materially, they remain dissatisfied at heart. And so there is a great need to spread this Vedic knowledge in order to relieve this condition of the world. So this is done through the medium of Srimad Bhagavatam. So therefore the topics of Srimad Bhagavatam, by hearing these topics, we can relieve this lacking that is present in the world. So yesterday, Maharaj was telling towards the end of class about Maharaj Parikshit and how he was, when first to die, he inquired, what is the primary duty for one who is about to die at the next moment and also for those who may die after some time? So in his case, he had specific warning that he was to die within 7 days. So this question was very relevant for him, but it is relevant for all of us because we don't know whether we are going to die at the next moment. We don't know whether we have 7 days, 7 years, or 100 years. So this question is very important for all of us. So he said at that time, other practices such as giving in charity or trying to restrain the senses of the mind, yum yum, etc., these practices will not help us at that time, at the time of death. They said at the time of death, the only thing that can save us is the chanting of the holy name of the Lord, either the name of Krishna or Ram or any other principal name of the Lord. So he told one story that there was a great king, very wealthy, very powerful, and one sannyasi came to him and he requested an audience with the king. And the king refused to give audience. The servant went and requested that the sannyasi has come. He wants to meet with you. And the king was thinking, he's just coming to bother me, he's just coming to beg for something. So, you please tell him that I have no time. So this went back and forth a few times. Finally, the sannyasi became discouraged, and instead he requested an audience with the queen, because women are by nature soft artists. So then he got audience with the queen, and he informed her that I am a great astrologer, and your husband will die within 7 days. So after that he left, and the king managed to find him. And when he came, he said, so what shall I do now? He said, no problem, you have performed so many pious activities. You will go to the heavenly planet, and there you will enjoy so much facility. But there's only one problem, that in the heavenly planet there are very large mosquitoes. And they will create so much problem for you. But no problem, they have very good mosquito nets there. The only difficulty is that they have holes in them. You'll have to bring a thread and needle. So he said, but how do I bring? I will not be able to bring anything from this world. So he said, therefore, understanding this point, you should know that the only solution is to get free from this process of birth and death altogether by chanting the holy name of the Lord. So, time is short, we don't have time to explain all the things that Maharaj is speaking tonight. But the main theme that was running through the class was the importance of chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we'll stop there, and now we can chant the holy name.
Thank you for summarizing briefly of the indulgence to start the system now, foundation, and all our steps to start in the dining hall before you leave. Thank you.